कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारिय, यशोद नंदन व्रज जन रंजन, यशोद नंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राधा गिरिधारे राधा गिरिधारे राधे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बालदेवा जय सुभद्रा, जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय, Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada ki jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudhirayet Nashta Prayesha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Srimad Bhagavatam Skanda Sat Adhyay Sat Shlok Sankha 45 Kime te ratmanas tuche Kime te ratmanas tuche Sahadehe nanashware Sahadehe nanashware Anarte rarta sankar Anarte anarte narta sankarshau Anarte rarta sankashe Nityananda rasodhade Nityananda rasodhade Sadehena Nashvare
Thank you.
ಕಿಮೇತೈರಾತ್ಮನಸ್ತು ಚೇರ್ ಸಹ ದೇವೇನ ನಶ್ವರೇರ್ ಅನರ್ಥೈರರ್ಥ ಸಂಕಾಶೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ರಸೋದೇ ಮೇತೈರಾತ್ಮನಸ್ತು ಚೇರ್ ಸಹ ದೇವೇನ ನಶ್ವರೇರ್ ಅನರ್ಥೈರರ್ಥ ಸಂಕಾಶೇರ್ ಹಿಮೇತೈರಾತ್ಮನಸ್ತು ಚೇರ್ ಸಹ ದೇಹೇನ ನಶ್ವರೇ ಅನರ್ಥ ಸಂಕಾಶೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ರಸೋದೇ ಹಿಮೇತೈರಾತ್ಮನಸ್ತು ಚೇರ್ ಸಹ ದೇಹೇನ ನಶ್ವರೇರ್ ಅರ್ಥ ಸಂಕಾಶೇರ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ರಸೋದೇ ಹಿಮೇತೈರಾತ್ಮನಸ್ತು ಚೇರ್ ಸಹ ದೇಹೇನ ನಶ್ವರೇ ಅನರ್ಥೈರರ್ಥ ಸಂಕಾಶೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ರಸೋದೇ ಕಿಂ ಕ್ಯಾ ಲಾಭ ಏತೈಃ ಇನ್ ಸಬೋಂಸೆ ಆತ್ಮನಃ ಅಪ್ನೆ ಕೋ ತುಚ್ಛೈಃ ಜೋ ಪ್ರಾಯ ನಗಣ್ಯ ಹೈ ಸಹ ಸಾತ್ ದೇಹೇನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಶ್ವರೈರ್ ನಾಶ್ವಾನ್ ಅನರ್ಥೈಃ ಅನಿಶ್ಚಿತ್ ಅನಿಶ್ಚಿತ್ತ ಅರ್ಥ ಸಂಕಾಶೈಃ ಐಸಾ ಪ್ರತೀತ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಮಾನೋ ಅವಶ್ಯಕ್ತಾ ಹೋ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ರಸ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಉದದೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಅನುವಾದ ಅವರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಎ ಸಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಿಕೆ ದ್ವಾರ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಿಕೆ ಜಯ ಯೇ ಸಾರೇ ರಾಜ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಯೇ ಸಾರೇ ರಾಜ ಸಾಮಾನ್ ತಬಿ ತಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಲಗ್ತೆ ಹೇ ಜಬ್ ತಕ್ ವಹ ಶರೀರ ಶರೀರ ಹೇ ಕಿಂತು ಜೋ ಹಿ ಯಹ ಶರೀರ ನಷ್ಟ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೇ ತೋ ತ್ಯೋ ಹಿ ಶರೀರ ಸೆ ಸಂಬಂಧ ಯೇ ಸಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾರಿ ವಸ್ತುವೆ ಭಿ ಸಮಾಪ್ತ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೇ ಅಥೇವ ವಾಸ್ತವ ಮೇ ಕಿಸಿ ಕೋ ಇನ್ಸೆ ಕುಚ್ ಲೇನಾ ದೇನಾ ನಹೀ ರಹತಾ ಹೇ ವಹ ಅಜ್ಞಾನವಶ ಹಿ ಇನ್ಹೇ ಮೂಲವಾನ್ ಸಮಜ್ ಬೈಠತಾ ಹೇ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಾಗರ ಕಿ ತುಲನಾ ಮೇ ಯೇ ಸಾರಿ ವಸ್ತುವೇ ನಗಣ್ಯ ಹೇ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನ್ ಜೀವಕ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಏ ನಗಣ್ಯ ಸಂಬಂಧೋ ಸೆ ಕ್ಯಾ ಲಾಭ ಹೇ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಶಾಶ್ವತ ಆನಂದ ಕಾ ಸಾಗರ ಹೇ इस शाश्वत आनंद की तुलना में समाज के तात्कालिक सुख, मित्रता तथा प्रेम व्यर्थ तथा नगण्य हैं। अतएव मनुष्य को क्षणिक वस्तुओं के लिए आसक्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके सदा ही के लिए सुखी बन जाए। ओम अज्ञात मिरांदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वापदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देव प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 45वां श्लोक के पहले वाला श्लोक का तात्पर्य नहीं है, 44वां श्लोक, उस श्लोक को पढ़ेंगे और उसका अनुवाद पढ़ेंगे। किम उ व्यवसिता पत्या धारा गृह धनाढ्य राजकोश गजामात्या भृत्यापत्य ममतास्पदाः। चूंकि शरीर को अनंत क्योंकि शरीर को अंततः मल या मिट्टी में बदल जाना है, तो अतएव इस शरीर से संबंधित सामान तथा पत्नियां, घर, धन, बच्चे, संबंधी, नौकर चाकर, मित्र, राज, खजाने, पशु तथा मित्रों तथा मंत्रियों से क्या प्रयोजन, ये सभी नश्वर है। इनके विषय में और अधिक क्या कहा जा सकता है। तो ये दो श्लोक हैं, 44वां और 45वां श्लोक। इन श्लोकों में प्रहलाद महाराज अपनी माँ के घर में नारद मुनि जो शिक्षा ग्रहण किए, उन शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं। कुछ श्लोकों पहले, कल परसों के श्लोकों में, प्रहलाद महाराज ने कहा कि हमको भौतिक कार्यों के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भौतिक चीज़ें हैं वो अपने आप बिना प्रयास के आ ही जाता है। हमारा दुख का शुरुआत होता है प्रयास करने से। जैसे भौतिक इच्छा हुआ मन में और जैसे हमने प्रयास करना शुरू किया, उसी से हमारा दुख का शुरुआत हुआ। ये बात हमने सुखा। अभी ये प्रयास करने के बाद भौतिक वस्तु प्राप्त हुआ, प्राप्त होने के बाद वो कैसे दुख देता है उसका वर्णन है। यानी प्राप्त होने के बाद हमसे छोड़ देता है, हम उसको उससे हमारे हाथ से छीना जाता है या हमारा मृत्यु होता है। तो वो समय का दुख का वर्णन है। तो दूसरे शब्दों में तीनों अवस्थाओं में वो भौतिक इच्छा या भौतिक वस्तु प्राप्त होने के पहले, जब वो भौतिक चीज़ हमारे हाथ में है और जब हाथ से जब छूट रहा है, तीनों अवस्थाएं यानी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो किस प्रकार भौतिक चीज़ें हमको केवल दुख देता है उसका वर्णन ये अध्याय में अधिकांश हुआ है। तो ऐसा नहीं कि भौतिक वस्तु प्राप्त होने के बाद दुख मिलता है, नहीं, वो पहले भी दुख मिलता है। ठीक है, अभी दुख मिला, इसको छोड़ दूंगा तो दुख चले जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इट इज़ ऑलवेज तीनों अवस्थाओं में। ऐसा कभी व्यक्ति सोचना नहीं चाहिए अभी मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास वो नहीं है। नहीं, अभी आपके पास नहीं है तो आप सुखी हो, लेकिन इसके प्राप्त करने के लिए प्रयास करते दुख शुरू हुआ। ठीक है, तो वो प्राप्त करने के लिए प्रयास क्यों करता है? वो सोचता है कि मुझे ये भौतिक चीज़ें प्राप्त हो जाएगा, जो मेरे पास नहीं है, धन प्राप्त हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन धन प्राप्त होने के बाद कुछ और दुख है। मान लो धन प्राप्त हुआ, बहुत दुखी, मैं धन को खो जाऊंगा, मतलब इससे ये मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं दुखी सुखी हो जाऊंगा। जैसे मैं इससे निकल जाता है तब भी दुख है। यानी तीनों अवस्थाओं में श्री राधा गिरिधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की अवस्था में दुख है। खास करके अभी वर्णन हो रहा है कि ये जैसे भौतिक चीजें हमारे से छूट जाता है उस समय कैसे दुख होता है। तो अगर वैसा है तो इन सब चीज से क्या फायदा, सार रूप में ये दो श्लोकों में कहा गया है इस बात को। तो अभी हम थोड़ा सा इसको चर्चा करेंगे। ये श्लोक में कहा गया है किम एतेर, मतलब क्या फायदा। एतेर मतलब जो पहले श्लोक में वर्णन किया हुआ है, किन लोगों का वर्णन किया हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग पैराफ्रेज़, लाइक वाइव्स, ये शरीर और साथ साथ में इनके शारीरिक संबंधित लोग, जैसे पत्नी हुए या बच्चे हुए, अनेकों लोग, और घर, संपत्ति और बड़ा राज्य और खजाने, ये एतेर शब्द के द्वारा इन सबको सूचित किया जाने। पिछले श्लोक में जिन चीज़ों का वर्णन हुआ है, यानी शरीर के संबंधित चीज़ों का, कि मेतेर क्या फ़ायदा इनका, व्हाट इज़ द यूज़, क्यों क्या फ़ायदा क्यों नहीं है, क्योंकि आत्मनः तुच्छ ही, क्योंकि आत्मा के लिए ये तुच्छ है। क्यों आत्मा के लिए क्यों तुच्छ है? आत्मा जो है वो सच्चिदानंद विग्रह है, सच्चिदानंद स्वरूप में आत्मा है। और जितने भी किम एतेर वर्णन हुआ है वो सब चीज़ें भौतिक है। तो अगर भौतिक है तो ये आत्मा सच्चिदानंद है, तो ये सच्चिदानंद आत्मा को ये भौतिक चीज़ें कैसे संतुष्ट कर सकता है? प्रश्न ये है। ये किम जो शब्द है ये इस प्रश्न को सूचित किया जाता है, इससे क्या फ़ायदा, हाँ क्यों फ़ायदा नहीं है, इससे क्यों संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो आत्मा है या सच्चिदानंद विग्रह, ये आत्मा की नज़र से तुच्छ है। वैसे भौतिक जगत के दृष्टिकोण से देखा जाए ये बड़ा महान चीज़ है। पत्नी जो है उनको, अरे पति के बिना कैसे जिएगा, कोई व्यक्ति सोच सकता है। पत्नी होने के, अरे पुत्र नहीं है तो, पुत्र नहीं तो बड़ा उसको शोक लगता है, पुत्र नहीं है, रोना शुरू करता, उसके लिए बड़ा महान चीज़ है। लेकिन तुच्छ ही, आत्मा के दृष्टिकोण से सब तुच्छ है। कुछ लोगों के लिए कुछ महान लग सकता है, दे मे थिंक इट इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी, इसके बिना मैं कैसे जीऊँ। अरे तुम्हारे पास ये नहीं है तो क्या फ़ायदा। भाई जी आजकल तो ऐसा बात करते हैं लोग, अरे आपके पास मोबाइल नहीं है तो एकदम ऐसा लगता है कि कैसे जी रहो, हाउ आर यू। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो महान माना जाता है, इसके बिना जी नहीं सकता हूँ, ऐसा जिस चीज़ों को बोला जाता है, लेकिन वो तुच्छ ही। क्यों तुच्छ ही? आत्मा के दृष्टिकोण से तुच्छ ही। दूसरे शब्दों में एक जगह कहा गया कि आचार्य कहते हैं जिस व्यक्ति को आत्मनहा मालूम पड़ गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, उसी समय से सब तुच्छ लगने लग जाता है। दूसरे शब्दों में कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन को अपनाया है उसका क्या सबूत है, इसका यही सबूत है इन सब चीज़ों को तुच्छ माने लगता है। जब तक इन सब चीज़ों को कुछ महत्व देता है इसका मतलब है अभी भी उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। धन को महत्व देता है, पत्नी को महत्व देता है, पुत्र को महत्व देता है, राज्य संपत्ति पदवी को अभी भी, अपना जो अपने साथियों को, अपना फॉलोअर्स को भी महत्व देता है, तो इसका मतलब है उनके अंदर आत्मज्ञान प्रदान नहीं हुआ, आत्मज्ञान उदय नहीं हुआ। जब तक आत्मज्ञान का उदय नहीं होता है तब तक इन चीज़ों को वो महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, हम सब जानते हैं, प्रभुपाद जी उसको गार गार कोट करते हैं, ये तुच्छ इस शब्द को लेके कि षड गोस्वामीगण क्या मानते थे कि ये त्यक्त्वा तूर्ण वशेष मंडलपतिम सेडिम सदा तुच्छवत अशेष मंडलपतिम। वो कौन से कहाँ कहाँ कितने अनेकों मंडल के पति थे, बड़े बड़े राजा के पदवी में थे, देखा जाए सभी धनाढ्य परिवार से, रघुनाथ दास गोस्वामी हो, गोपाल भट्ट गोस्वामी तो पूरा श्रीरंगम के हेड प्रीस्ट के पुत्र है, और रूप सनातन ऑलमोस्ट राजा ही थे, वो लोग मिनिस्टर्स थे, उन्होंने क्या किया, कैसे त्याग किया, तुच्छ ही ऐसा तुच्छ समझ के त्याग किया। क्यों त्याग किया, उनको मालूम है इन सब चीज से क्या फायदा, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस थिंग। तो आत्मज्ञान का उदय होते ही एक प्रकार का इस प्रकार का वैराग्य आता है, आना चाहिए, अभी तक आया नहीं इसका मतलब आत्मज्ञान का उदय नहीं हुआ है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि भक्ति में प्रगति हो रहा है तो उसका क्या लक्षण है, उस लक्षण के बारे में भागवत में बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिसके अंदर कहा गया है कि जैसे तुष्टि पुष्टि भक्ति परेशानुभव विरक्ति रण्यत्व एक काल, जैसे आपका हृदय में भक्ति प्रकट हुआ है या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ है तो क्या होना चाहिए, तीन चीजें प्रकट होना चाहिए, तीन चीजें साथ साथ में होना चाहिए, त्रिश एक खाला। सबसे पहला क्या है कि भक्ति, जो भी हम भक्ति के कार्य में आसक्ति उत्पन्न होना चाहिए, पर ईशा अनुभव यानी हर समय भगवान का स्मरण होना, हर एक प्रसंग में कृष्ण का दर्शन करना, ये कृष्ण की योजना से हुआ है ठीक है समझ लेना ये, और विरक्ति, ये भौतिक चीजों से विरक्ति, ये तीन चीजें। जैसे कोई व्यक्ति भूखा है, वो भूखा व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति एक ग्रास खाता है, अनुग्रासम, एक ग्रास खाने पर तीन चीजें होता है, एक है उनको बहुत स्वादिष्ट स्वाद का महत्व अनुभव होता है, क्योंकि भूख में भले ही आप जो स्वादिष्ट व्यंजन भी नहीं खिलाओ तो उसको स्वादिष्ट लगता है, अगर किसी का पेट भरा हुआ है उसको स्वादिष्ट व्यंजन भी खिलाओ उसको लगता है कि क्या इतना टेस्टी नहीं है कि नहीं। किसी व्यक्ति भक्त का प्रोजी इतना टेस्टी नहीं है, मैंने बोला कि जो भूख लगता है ना सब टेस्टी लग जाता है, व्हेन यू हैव हंगर ऑटोमेटिकली एवरीथिंग बिकम्स टेस्टी, इजंट इट। तो उसी प्रकार भक्ति में भी ऐसा है, जो जिसको भक्ति का भूख लगा है सच में जो छोटा छोटा चीज भी उसको भी स्वादिष्ट लगने लग जाता है। जैसे कभी कभी ये अनुभव होता है जो हमारे जो मंदिर में ब्रह्मचारी के रूप में आंटी का दर्शन किया और रोज दर्शन हो रहा है तो उतना भूख नहीं है क्योंकि रोज मिलता है ना तो ऐसे भूख नहीं लगता है। लेकिन कभी कभी कुछ भक्तों कहीं बाहर जाते हैं कहीं प्रचार करने के लिए या किसी कारणवश मंदिर से दूर रहना पड़ता है, तब वो लोग जब हफ्ते 10 दिन 15 दिन के जब वापस आते हैं उनका जो भूख है उसमें किसी भी प्रकार का ड्रेस पहना तो राजा बहुत सुंदर है ऐसा लगता है कि नहीं। तो नहीं हो ये तो बात अलग है। तो ये तीन चीजें साथ में होना चाहिए, जैसे कोई अनुग्रासम, एक ग्रास ग्रहण करने से क्या होगा उसको बहुत स्वादिष्ट लगने लगता है भूखा व्यक्ति को, और जैसे और एक ग्रास ग्रहण करता है तो साथ साथ में क्या होगा उनको शक्ति प्राप्त होता है, पुष्टि, पुष्टि मतलब उनको पौष्टिकर आहार मिला शक्ति प्राप्त हुआ। तो वैसे ही जो भक्ति करता है स्वाभाविक तरीके से भौतिक जगत से उत्पन्न हुआ जो दुख है उससे उनको एक प्रकार का शक्ति मिलता है, उसे सहन करने का शक्ति मिलता है, ही विल बी ऑलवेज टॉलरेंट, ये दूसरा है। और तीसरा है उनको पेट भर जाता है, जितना खाता है उतना उसका पेट भर जाता है और भूख मिट जाता है। उसी प्रकार ये भौतिक चीजों को प्राप्त करने का जो भूख है वो मिट जाता है और इन भौतिक चीजों को कैसे समझने लगता है, तुच्छ समझने लगता है, आत्महना तुच्छैर, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, इसके ऊपर अनेकों आचार्य ने कमेंट्री दिया है। तो उन्होंने कहा कि विजयदज तीर्थ उनकी कमेंट्री में लिखा है आत्मनस्तुच्छैर, क्यों है आत्मनस्तुच्छैर, क्योंकि जिसको मालूम पड़ गया है आत्मनः, ये शरीर आत्मा नहीं है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये आत्मा जो है वो सच्चिदानंद है, वो ये इन वस्तुओं में कोई सच्चिदानंद नहीं है, इसलिए क्या फायदा, तुच्छैर, ये तुच्छ करके समझ के आगे बढ़ता है। तो आगे वाला श्लोक में आगे वाला लाइन में लिखा है, क्या लिखा है, सहदेहेन नश्वरैर, सहदेहेन नश्वरैर,
तो प्रश्न उत्पन्न होता है, ठीक है नहीं, उसके बिना जी कैसे सकते हो? हाउ कैन यू लिव विदाउट देम? अगर आहार नहीं ग्रहण करोगे इनके बिना तो कुछ जीवन तो व्यर्थ है। तो उन्होंने कहा इस श्लोक में प्रहलाद महाराज की उक्ति है, सह देह है ना नश्वर है, ये देह के साथ उन वो सब खत्म हो जाते हैं। जैसे देह नष्ट हुआ तो अगले जन्म में कई और जन्म होगा, तो पिछले जन्म के शरीर के साथ संबंधित चीज़ों का कोई कुछ वैल्यू ही नहीं रह जाता, कोई उसका मतलब ही नहीं है। ये तभी तक कुछ मतलब रहता है जब तक आपका ये शरीर है। तो इसलिए सह देह है ना नश्वरेर। आगे ये कहा गया है कि अनर्थेर अर्थ संकारे शंकारे, अनर्थेर अर्थ संकारे। और जिसको हम अर्थ समझते हैं, अर्थ मतलब क्या है, इसका कुछ वैल्यू है, इनका कुछ हाँ ये मेरे लिए जीवन में उपयोगी है, अर्थ में तो उपयोगी है या उनका कुछ मूल्य है, ऐसा समझना अर्थ है। अनर्थ संकारे, तो हम क्या करके बैठ गए, ये अनर्थ जो चीज है उसको अर्थ करके मान कर बैठ गए, ये इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता हूँ, ये मेरे लिए बहुत उपयोगी है, अस्तित्व में इसका कोई उपयोग नहीं, किसी भी तरीके से उपयोग नहीं है, देयर इज नो वैल्यू ऑफ ऑल दिस थिंग्स। जीने के समय क्या, जीने के बाद तो उपयोग है नहीं, लेकिन जीने के टाइम में भी इन लोगों का उपयोग नहीं है, हमारा शरीर रहता है वो टाइम उपयोग नहीं। तो अर्थ संकार है, तो इसके विषय में कहा गया है संकार है, अपरिंग टू बी, ऐसा लगता है कि ये सब चीजें का मेरा, इन सब चीजों का मेरा कुछ उपयोग है, लेकिन इनका कोई उपयोग नहीं, देयर इज नो यूज ऑफ इट। क्यों, नित्यानंद रसोद दे, सारे जितने भी आचार्य है इन इस लाइन के ऊपर ज्यादा टीका दिए है, नित्यानंद रसोद दे। क्यों, क्योंकि ये आत्मनः, ये आत्मा का जो संबंध है वो किसके प्रति है, नित्यानंद रसोद दे। ये कौन है नित्यानंद रसोद दे, तो श्रील विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं कि भगवान की जो भक्ति है, हरेर भक्ति भक्त प्रसंगात, भगवान का जो भक्ति है वो भी किसके प्रसंग में, किसके संग में, भक्तों की संग में, क्या है ये नित्य आनंद, नित्य आनंद प्रदान करने वाला है और नित्य आनंद रस को प्रदान करने वाला है। और ददेह मतलब जैसे सागर है, सागर को ददे कहा जाता है, खास करके ये जो महोदधि, बे ऑफ बंगाल है ना, उसको महोदधि कहा जाता है शास्त्रों में, इट इज नॉट महोदधि, तो वो ददे शब्द इधर है, लाइक द ओशन, इट इज इनसिग्निफिकेंट इन रिलेशनशिप टू द ओशन। कौन सा ओशन है, नित्यानंद। अभी ये भौतिक चीजें कुछ आनंद जरूर प्रदान करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है, वो आनंद भी क्यों है, क्योंकि वो भगवान से उत्पन्न हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि भौतिक चीजों में कोई सुख नहीं है, लेकिन कुछ एहसास होता है, सुख मिलने का एहसास होता है कि नहीं, वो भी क्यों है। मान लो कोई बहुत प्यासा है, जैसे पानी मिलता है उसको थोड़ा सुख अनुभव होता है, तो उसको ऐसा लगता है हाँ पानी में सुख है कि नहीं, थोड़ा सा सम एंजॉयमेंट इज देयर। वो भी क्यों है, क्योंकि वो भी भगवान से उत्पन्न हुआ है, जो नित्य आनंद घन है। जैसे भगवान को सांग्रानंदा उबोधात्मकम कहा गया है, सारा आनंद को एक जगह रखा जाए, वो आनंद का खजाना है भगवान, इज अबोर्ड ऑफ ब्लिस। तो उनसे भौतिक चीजें उत्पन्न हुआ है, इसलिए कुछ लगता है कुछ आनंद मिल रहा है। इवन ये भगवान की उत्पत्ति है ना, अगर मान लीजिए पानी है, जल है, आहार है, या कोई भी भौतिक चीज है, संपत्ति है, वो सब चीजें भगवान का ही देन है, भगवान की सृष्टि है, क्योंकि भगवान की सृष्टि है, उसमें ऐसा लगता है थोड़ा सा आनंद है। क्यों, क्योंकि वो भगवान का सृष्टि है, इट इज बिकॉज कृष्णा इज, इट इज कमिंग आउट ऑफ कृष्णा। तो नित्यानंद रसोद दे, लेकिन ये नित्य आनंद प्रदान करने वाला नहीं है, इट डजंट गिव यू एटर्नल हैप्पीनेस, लेकिन ये नित्यानंद प्रदान करने वाला क्या क्या वस्तु है, वो है ये भगवान की भक्ति, वो भी कैसे, भक्तों की प्रसंग में। तो हमेशा भक्तों को इस प्रकार का तत्व विचार बार बार करना चाहिए। ये जो तत्व विचार है, ये करने से क्या होता है, हमारा मन जो है बड़ा दृढ़ बनता है। ये दृढ़ जब तक हमारा मन नहीं बनता है, तब तक कृष्ण के चरण कमल को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए चैतन्य चरितामृत में आपको स्पष्ट रूप में श्लोक लिखा गया कि सिद्धांत बले चित्त ना करे आलस, यही सिद्धांत है, अरे इतना कौन पढ़ेगा, ये सब चीजें विचार क्या करने की जरूरत है, ये एक बार बोलने से हो जाता है, बार बार अनेकों श्लोकों में यही बात कहा जा रहा है, ये क्यों है, व्हाई इट इज सो, क्योंकि ये इसके ऊपर विचार करने से क्या होगा, हम कृष्ण लागे सुदृढ़ माना, ये हमारा मन जो है कृष्ण के चरण कमलों बहुत दृढ़ता से स्वीकार कर सकता है। इसलिए सिद्धांत विचार बहुत महत्वपूर्ण है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खास करके इन श्लोकों में आपको एक चीज दिखाई पड़ रहा है, वो है ये भौतिक जगत के वस्तुओं में दोष देखना। भगवद गीता में भगवान ज्ञान के एक अंग कहते हैं 13वां अध्याय में, वो क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शन, मतलब ये जो भौतिक जगत है उसके अंदर जन्म के साथ जो आने वाला चीज है मृत्यु, ये भौतिक जगत के दोष देखना, ये बार बार हमेशा करते रहना चाहिए। अगर भौतिक जगत में जरा सा भी कुछ खूबी या कुछ ऐसा अच्छा चीज देख लिया, इसका मतलब है उसके अंदर आकृष्ट हो जाता है व्यक्ति। तो भक्तों के संग में ये निंदा जो है ये किया जा सकता है। किसका निंदा किया जा सकता है, ये भौतिक वस्तुओं के साथ आसक्त या आसक्ति या भौतिक चीजों का जो निंदा, इससे क्या दुख होता है, उसका बार बार मंथन करना, बार बार विचार करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतना हद तक कि कभी कभी भक्तों को बैठ के चर्चा करना चाहिए, किस प्रकार ये भौतिकवादी लोग जो है मूर्ख है, वी हैव टू डिस्कस दिस थिंग, हाउ फूलिश मेटेरियलिस्टिक पीपल आर, कैसे भौतिक चीजों के प्रति आसक्त होके इतना आनंद का जो सागर है भगवान श्री कृष्ण, उनकी भक्ति को छोड़ के ये कैसे इधर भौतिक चीजों के प्रति आसक्त होके दुख भोग रहे, बाजू में रखा हुआ है। इसलिए मैं शानी को शास्त्रों में खास करके भक्तों के गीत में ये एक प्रकार का उनका भौतिक लोगों को देख के ये जो विचार है, अरे इतना सुंदर सागर पड़ा हुआ है, इतना आनंद का सागर, इसको छोड़ के कहाँ जा रहे, ऐसी बने को श्लोक है सो मनी, अहो अहो अहो, ये शब्द के द्वारा कुलशेखर आलवार भी बात कहते हैं कि इतना दुर्भाग्य है लोगों का, जैसे पिछले श्लोक में, पिछले क्लास में श्लोक कोट किया था, ये सुधम परित्यज्य, सुधाम परित्यज्य विषम विबंती, सुधाम परित्यज्य, सुधा मतलब अमृत है, इसको त्याग करके क्या कर रहे, विषम पिबंती, विष को जहर को पी रहे। वैसे एक जगह नहीं, अनेकों अनेकों जगह इस बात को कहा गया है कि आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य की बात है, किम, जैसे पिछले श्लोक में भी इस बात को कहा था, ये भी आश्चर्य है, ये किम जो शब्द है, किमे तेर, ये जो नित्यानंद रसोध दे, नित्यानंद का रस जो भगवान का जो भक्ति है उसको त्याग करके लोग जो है भौतिक चीजों को आकृष्ट हो रहे, दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू दोस थिंग्स। इसलिए भक्ति का एक लक्षण है सांद्रानंद विशेषात्मा, ये नवदा भक्ति या जो शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण है, उनमें से सांग्रानंद विशेषात्मा, ये आनंद का सागर है, केवल आनंद कंड। तो तब प्रश्न आता है, अगर कि केवल आनंद कंड है भक्ति में, फिर भी मुझे, मैं दुखी क्यों हूँ, वाई एम आई अनहैप्पी, मैं जो भक्ति कर रहा हूँ लेकिन फिर भी दुख आ रहा है, क्या है, क्या जरूर, इसका क्या मतलब है, इसका एक ही कारण है, अभी भी इन चीजों के प्रति आसक्ति है, या अपने घर वालों के प्रति, या पत्नी के प्रति, या पति के प्रति, या पुत्र के प्रति, या संपत्ति के प्रति, या पोजीशन के प्रति, या कोई ना कोई चीज के प्रति आसक्ति है, तभी इस भक्ति करने पर भी वो आनंद को प्राप्त नहीं कर रहे। व्हाट इज द थिंग, ऐसा क्या है, भक्ति जो है वो आनंद से भरा हुआ है, सारे शास्त्रों में कहा गया है, सारे आचार्यों का अनुभूति है, लेकिन ये जो है मुझे क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, व्हाई एम आई, उन दोनों के बीच में एक चीज है, वो एक ही रुकावट है, क्या है, वो भौतिक आसक्ति। चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, कहीं ना कहीं किसी चीज के प्रति भौतिक आसक्ति है, तभी ये वो आनंद प्राप्त नहीं हो रहा, वो एकदम नजदीक रहते हुए भी नहीं प्राप्त हो रहा है, इट इज जस्ट वेरी नियर, बाजू में है, मंदिर है, श्री विग्रह है, सेवा है, हरिनाम है, वैष्णव है, भागवतम है, ये सब कुछ सब बाजू में है, एकदम नजदीक में है कि नहीं, लेकिन फिर भी वो क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है, व्हाई इट इज, व्हाई यू आर नॉट गेटिंग इट, क्योंकि बहुत ही आसक्ति, हाँ हाँ अर्जुन और कृष्ण, कृष्ण सामने हैं, फिर भी उनको उनका पूरा शरीर घबरावट, नाना प्रकार का दुख को अनुभव कर रहे थे, क्यों, क्योंकि इसी के लिए, क्यों ऐसी, क्योंकि उनको आ सकती था, इट इज मेटेरियल। तो ये इन श्लोकों का विशेष सार है कि हमको इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अगर भक्ति आनंदमय है, इसके पूरा आनंद ही भरा हुआ है, ऐसा क्यों है, मुझे क्यों प्राप्त नहीं हो रहा, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग इट, उसका एक ही कारण, बिकॉज आई एम स्टिल अटैच टू दिस थिंग। यह आसक्ति क्यों नहीं है, क्यों है, क्योंकि हमारा विचार बराबर नहीं है, तत्व विचार बराबर नहीं है, इसको तुच्छ नहीं समझ रहे, वी आर नॉट अंडरस्टैंड इट इज तुच्छ। खास करके जिस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का भाव आता है कि ये भौतिक चीजें तुच्छ है, दे आर ऑल इनसिग्निफिकेंट थिंग्स, निश्चित रूप में उनके ऊपर विशेष तरीके की कृष्ण कृपा, जैसे चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात हुआ रूप गोस्वामी और अनुपम, तब उन्होंने कहा कि आप लोग ये भौतिक जगत से मुक्त हो गए, उनको तुच्छ समझने लगे। इसका मतलब है आपके ऊपर कृष्ण का कृपा है। तब रूप गोस्वामी कहते हैं ये नहीं मालूम कृष्ण कृपा में हमारे ऊपर है कि निश्चित रूप में आपका कृपा है। चैतन्य महाप्रभु को गुरु के रूप में दर्शाया गया है। तो जब तक एक गुरु का कृपा नहीं होता है तब तक ये भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं जाता है। तो आप सबको मालूम है पिछली बार जब बलराम जी के बारे में चर्चा किया था, दो चीजें जो है, दो असुरों को बलराम ने वध किया है कि नहीं, एक कौन है, देनुकासुर, दूसरा है प्रलम्बासुर। ये दो चीजों को बलराम ने क्यों वध किया, क्योंकि ये दो ऐसे अनर्थ है, एक है देहात्म बुद्धि, ये सब कुछ देहात्म बुद्धि से शुरू होता है, आसक्ति देहात्म बुद्धि से शुरू होता है। जब मैं इस मान के चलता हूँ कि मैं शरीर हूँ और शरीर की संबंधित चीज़ों को मेरा करके समझ के चलता हूँ, ये जो है भगवान नहीं मारते, ये कौन मारते हैं, केवल बलराम जी मारते हैं। बलराम जी कौन है, आदि गुरु है। तो ये आदि गुरु बलराम जी यानी गुरु तत्व, वही हमारे हृदय में इस प्रकार का जो अनर्थ है उसको नाश कर सकते हैं। कैसे नाश करेंगे, ये तत्व ज्ञान के द्वारा नाश करेंगे। तो ये तत्व ज्ञान को बैठ के श्रवण करना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि तीन अवस्थाओं का जो हमारी चेतना है उसको हमेशा बना के रखना चाहिए। जब प्रवचन में बैठते हैं तो उसके बाद एक प्रकार का चेतना आता है, सच में सब तुच्छ है, मैं कहाँ आ गया हूँ, इस प्रकार का अनुभव होता है। उसके बाद शमशान जाते हैं, शमशान में जब चलता है क्या इतना सब कुछ किया, सब नष्ट हो गया, क्या फायदा इन सब चीज़ों का। हाँ, एक बार शमशान जाओ तो लगता है सच में क्या है सब, कितना किसी भी प्रकार के व्यक्ति भी क्यों ना हो, कितना भी आसक्त व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसके अंदर वैराग्य आता है। वो सोचता है कि बस ये सब कुछ कुछ फायदा नहीं इन सब चीज़ों का। और तीसरा है कि जब बीमार होता है सच में क्या फायदा है जीने का, ये सब दुनिया का, ये सब चीज़ें जिन लोगों के ऊपर मैं विश्वास रखा था मुझे देखभाल करेंगी, वो आते भी नहीं देखभाल करने के लिए, देखने के लिए अनेकों प्रकार का बातें मन में आता है कि नहीं। तो लेकिन ऐसा है कुत्ते का पूछ जैसा हमारा मन है जैसा समाप्त हो गया समय फिर वापस वो पूछ क्या है, कितना है? जब तक पकड़ के रहोगे तब तक सीधा रहता है पूछ, छोड़ दोगे तो क्या होगा, फिर वापस उसी अवस्था में आ जाता है, इट विल कम बैक टू द सेम सिचुएशन। तो ये गुरु के मुख से तत्व ज्ञान का श्रवण करने के द्वारा, तो ये हमारे हृदय में ये देहात्म बुद्धि है वो तुरंत नष्ट होता है, इट डजंट टेक मच टाइम। लेकिन प्रॉब्लम ये है क्या है कि उसको बना के रखना चाहिए, ये तत्व ज्ञान को अपने हृदय में बना के रखने के लिए, होल्ड करके रखने के लिए, संभाल के रखने के लिए इंद्रिय तृप्ति से बच के रहना चाहिए। ये इंद्रियां जो है हमारे जो सेंसेस जो है इंद्रियां, ये छेद के बराबर है, हमारा हृदय जो है एक कलश के बराबर है। अगर वो कलश में बहुत सारे छेद है तो उसके अंदर कितना भी पानी डालो क्या होगा, वो बह जाता है। तो वैसे इस हृदय में आप कितना भी तत्व ज्ञान को भरो ऐसा लगता है कि आप भरा, लेकिन जैसे बाहर जाके इंद्रिय तृप्ति करने लगे तो क्या हुआ, सब समाप्त हो जाए। इसलिए जो श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर समेत इंद्रिय ज्ञान लब्ध्वा परां शांति चिरेणादि गच्छति, तो ये भगवद्गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसके अंदर कहा गया है कि अचिरेणादि गच्छति, अचिर मतलब तुरंत प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगा। कौन था कौन किस प्रकार का शांति है, ये भक्ति का आनंद का जो शांति प्राप्त हो जाएगा। कैसे कैसे, जिस व्यक्ति के पास ये तीन चीजें हैं, नंबर वन श्रद्धावान, श्रद्धा से गुरु के सान्निध्य में बैठ के जो तत्व ज्ञान का श्रवण करता है, एक सिद्धावान अवधे ज्ञान तत्परः, जो हमेशा तत्पर रहता है, मैं कब और ज्ञान को कब और सुनूं, कब और सुनूं, हमेशा इस प्रकार की तत्परता बना के रखता है। और तीसरा संयतेन्द्रियः, अपने इंद्रियों को वश पे रखता है, इंद्रिय तृप्ति नहीं करता है। जिसके अंदर ये तीन क्वालिफिकेशन है उसको निश्चित रूप में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा और हमेशा वो ज्ञान अपने हृदय के कलश पे भरा हुआ रहेगा और निश्चित रूप में उसको अचिरेणादि गच्छति, शांति जो है तुरंत प्राप्त होगा। ये जो अवस्था प्राप्त करने के लिए लंबा समय की आवश्यकता नहीं है, वो तुरंत हो सकता है। जो व्यक्ति ने कहा, जो व्यक्ति सोचता है कि अब मैं फंसा हूँ, ठीक है बाद में लेंगे, बाद में छोड़ेंगे, धीरे धीरे ये सब आएगा, ये इसका मतलब उसके अंदर तत्परता नहीं है। देयर इज नो तत्परता, प्रभु अभी टाइम है, अभी क्या करें, हम फंसे हुए हैं, धीरे धीरे होगा। इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे होगा मतलब क्या है, अभी आप कुछ मत बोलो, मैं अपने अपने हिसाब से अपने टाइम में मैं करूँगा, अभी ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, अभी अपने आप हो जाएगा, भगवान का कृपा होगा तब होगा। इसका मतलब क्या, वो तत्परता नहीं है। तो तत्परता के द्वारा वो बैठ के ज्ञान को प्राप्त करने की जिसके अंदर लालसा है और श्रद्धा से बैठ के गुरु के मुख से सुनता है, वो निश्चित रूप में उनकी जो वाणी है, गुरु की वाणी है, उनके मुख से जो शक्तिशाली शब्द है वो हृदय में प्रवेश करता है। हृदय में प्रवेश करके छिन्दन्ति सर्व संशयः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, दृष्ट्येवात्मनीश्वरे विद्यते हृदय ग्रंथि। उसको हृदय ग्रंथि कहा गया भागवतम में। ये ग्रंथि जो है अपने आप टूट जाता है। ये भौतिक जगत के साथ जो आसक्ति है वो घाट के बराबर है। जैसे आप सब जानते हो पतंग उड़ाते हैं, जब पतंग उड़ाते के समय कभी कभी हवा कम होता है तो पतंग को ऊपर रखने के लिए खींचना पड़ता है रस्सी, रस्सी को इतना जोर से खींचना पड़ता है तो नीचे गिर गिर के वो घाट बन जाता है। जब वो घाट बन जाता है उसको खोलना बहुत मुश्किल है, खास करके वो तो पतंग को बनाने के लिए सब गोंद वगैरह रखे समझ लीजिए, उसको पीछे पीछे चलते हो गोंद भी गिर गया उसके ऊपर, वो घाट के ऊपर, तो उसको निकाल ही नहीं सकते, है कि नहीं, उसको धीरे धीरे से खोलेंगे हो ही नहीं सकता। उसको कुछ करना है तो उसको विध्यते, विध्यते मतलब उसको ब्लास्ट करना होगा, तो वो बम डालना होगा। इसलिए कभी कभी शास्त्रों में ऐसे ऐसे श्लोक है, तो ये श्लोक जो है बम जैसे है। जब वो गुरु के मुख से सुना जाता है तो क्या होगा, वो हमारे हृदय में बम जैसा फूटेगा। एक व्यक्ति मुझे कहा कि एक साथ में बैठे थे बहुत प्रवचन में, तो उन्होंने कहा कि जैसे प्रवचन किया, उन्होंने कहा ऐसा लग रहा था मेरे हृदय में बम फूट रहे हैं। मतलब सही बात है, बता में भी यही कहा गया है, विद्यते हृदय ग्रंथि, इट इज ट्रू। क्योंकि ये आसक्ति इतना दुर्बल है, इसको तोड़ने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, ये बम की जरूरत है। ये सारे श्लोक के प्रहलाद महाराज के, 5 साल का बालक है, इज जैसे 5 ईयर ओल्ड बॉय, लेकिन उनके मुख से सारा जगत को भगवान सुना रहे हैं कि किस प्रकार आसक्ति को त्याग करना चाहिए। वन शुड गिव अप हिज अटैचमेंट, तत्व विचार बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है, हाँ भक्ति करते रहेंगे अपने आप हो जाता है ना, ये सही बात है, भक्ति में इतना शक्ति है, लेकिन भक्ति देवी वही प्रदान करती है जो आप चाहते हो, है कि नहीं, है कि नहीं। तो आपके चाहत में ही नहीं है, मैं भौतिक आसक्ति छोड़ो तो भक्ति भी कुछ नहीं कर सकती, है कि नहीं। भक्ति क्या है, वो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब जो चाहिए वो प्रदान करती है। अगर आपको चाहिए नहीं, सपोज फॉर एग्जाम्पल यू डोंट वॉन्ट डिटैचमेंट, तो भक्ति क्या करेगी, नहीं दे सकती। लेकिन ये जो तत्व ज्ञान है, गुरु का मुख से बैठ के श्रद्धा से श्रवण करना, अगर आप नहीं भी चाहो ना तो भी अंदर प्रवेश करेगा। नहीं भी चाहते हुए भी, अरे मेरा छूट जाएगा। बहुत सारे लोग इस्कॉन में पहली बार लेक्चर अटेंड करेंगे, दूसरी बार इसलिए नहीं आते, उनको लगता है घबराहट महसूस होता है, मेरा आसक्ति छूट ना जाए। उनका डर यह है, मैं अनासक्त हो जाऊंगा। तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, मंदिर जाएंगे लेकिन थोड़ा दर्शन करके आएंगे, प्रवचन में नहीं बैठेंगे। क्यों, तो बैठ जाऊंगा तो मेरा मैं अनासक्ति को प्राप्त कर लूंगा। तो एक व्यक्ति ऐसे हुआ था, एक बार भगवद गीता जो है हम दे रहे थे, तो वो पढ़ रहा था, एक व्यक्ति उसका मित्र कहा, नहीं छोड़ दो छोड़ दो इसको, छोड़ो मत। तो मैं क्या, क्या हो गया, उसको बेचारा पढ़ रहा है, तो उससे क्या कमाना है, इसको पढ़ोगे ना तुम्हारा पूरा वैराग्य आ जाएगा तुम्हारे अंदर, तुम्हारा पूरा नष्ट हो जाएगा, पूरा भौतिक जीवन जो है छोड़ दोगे, तुम भक्त बन जाओगे। तो मैंने सोचा कि इसके अंदर कितना विश्वास है। मानना पड़ेगा उसको इतना विश्वास है, इधर छूने से उसको इतना विश्वास है कि इसका वैराग्य आ जाए, उतना विश्वास मेरे अंदर नहीं है। भले वो भक्त है कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर इतना विश्वास है। अपने मित्र को बोल रहा है, ए डर जाओ, डरो इसको छुओ मत, सो अफ्रेड। अगर वो खुद के हाथ में रखता तो क्या हालत हो जाता उसको, देखो उसको मित्र के हाथ में रखा तो उनका हालत ऐसा। एनी हाउ, ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर ज्यादा बहुत सारे बातें पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन सार रूप में ये है, भौतिक चीजें खास करके धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है ये तुच्छ है, क्योंकि आत्मा के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, शरीर के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है। और अंततः ये तुलना करना चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए, भक्ति के द्वारा प्राप्त हुआ आनंद, भौतिक चीजों से प्राप्त हुआ आनंद, इनके तुलना में क्या है, इट इज तुच्छ, नथिंग इज देयर। और ये भक्ति के द्वारा प्राप्त हुआ आनंद हमको अभी क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक ये तत्व तत्व हमारे मन में घुसा नहीं है कि ये तुच्छ है। तो इसका कैसे प्राप्त होगा, ये तत्व विचार को गुरु का मुख से सुनने से होगा। तो ये इसका श्लोक का है। कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं क्वेश्चंस। इनका एक प्रश्न है कि एक नकारात्मक होता है, एक सकारात्मक होता है। एक है भौतिक चीज़ों में दोष देखना और उसको त्याग करना, और दूसरा है भौतिक चीज़ों को स्वीकार करना और कृष्ण के सेवा में लगाना, है कि नहीं? तो ये दोनों में कौन सा? हमारा सिद्धांत है भौतिक चीज़ों को स्वीकार करना और कृष्ण के सेवा में लगाना। ये किसको का, इसको युक्त वैराग्य कहा जाता है, है कि नहीं? लेकिन वो युक्त वैराग्य का परिभाषा क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन? वो भी एक प्रकार का वैराग्य है, isn't it? युक्त वैराग्य तभी है जब पहले हमारे पास वैराग्य है, बाद में युक्त कर रहे हैं, समझ रहे? तभी उसको युक्त वैराग्य कहा जाता है, नहीं तो केवल युक्त है। उसका टेस्ट क्या बताऊंगा? आप युक्त वैराग्य कर रहे हो या केवल कर रहे हो कि नहीं, इसका टेस्ट क्या है? टेस्ट यह है, मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे चीजें हैं, उसको भगवान की सेवा लगा रहे हो, तो भले ही आप भगवान की सेवा लगा रहे हो, चीज वस्तु बहुत ही क्या है ना, आपसे जब उसको छीना जाता है, आपको अगर दुख लगा, इसका मतलब क्या है? युक्त वैराग्य नहीं है, नहीं तो जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो युक्त वैराग्य है। इतना बड़ा महल, इतना बड़ा मंदिर बनाया, लेकिन कॉपिन बस धारण करके पेड़ के नीचे रहते थे, है कि नहीं? राधा गोविंद देव मंदिर बनने के बाद भी उन्होंने उधर उन लोगों को सेवा में नियुक्त किया, ब्राह्मणों को व्यवस्था सब देखभाल किया, आके कभी कभी प्रवचन देकर चला गया, बाद में वो क्या किए, वो तेर कदम के नीचे बैठे, वो ग्रंथ लिख रहे। राधा गोविंद मंदिर कितना बड़ा मंदिर है, दैट इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। नहीं तो हर मैंने किया, मैंने बनाया, इधर बैठे रहना, तो ये युक्त वैराग्य थोड़ी ना हुआ। इट इज एक मिनट, जस्ट समझ में आया, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन युक्त वैराग्य इज ऑल्सो ए वैराग्य। तो इधर क्या है, अगर कोई भौतिकता में प्रवृत्त व्यक्ति है, उसको कृष्ण की सेवा में कैसे भी लगाते हो, उनको शुद्ध करेंगे, उसको अभी उसको वैराग्य नहीं कर, उनको अभी भी वो विषय ही है। लेकिन युक्त वैराग्य तभी कहा जाता है जब उसके अंदर एकदम विरक्ति है, वैराग्य है। जैसे प्रभुपाद जी, इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा संस्था होने के बाद मायापुर में कहाँ रहते थे, वो एक कुटिया में रहते थे, हैप्पी देयर, दैट इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य इज ऑल्सो ए वैराग्य, इट इज नॉट समथिंग डिफरेंट, इट इज ऑल्सो वैराग्य। तो इसलिए हमको ये जो है युक्त वैराग्य जो पीएचडी है, पहले वैराग्य ग्रेजुएशन उसके बाद युक्त वैराग्य, हमारा सिद्धांत युक्त वैराग्य। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं जो भी करता हूं युक्त वैराग्य, ये बड़ा समस्या है। मैं भक्ति के सिद्धांतों को पालन करूंगा तो मैं भक्त बनता हूं, मैं भक्त हूं, जो मैं करता हूं वो भक्ति है, वो नहीं है। देयर इज अ स्टैंडर्ड, भक्ति के नियमों को पालन करूंगा तो मैं भक्त बनूंगा। और दूसरा क्या है, मैं भक्त हूं, मैं जो करता हूं वो भक्ति है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। तो वैसे ही पहला वैरागी, बाद में युक्त वैराग्य। पहले विचार करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद के जितने भी लेक्चर्स सुनिए, तो नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, उन्होंने बार बार उसी बात को कहा, गिव अप रिनाउंसिएशन। नहीं तो भक्ति का आनंद को आप अनुभव नहीं कर सकते। वो आनंद में भक्त क्या करता है, उन चीजों को लेके भगवान को सौंपता है, भगवान को प्रदान करता है। ऑल द गोस्वामीज देवर कंप्लीटली रिनाउंस्ड, कोई चीज से आसक्त नहीं थे। इसलिए हम जिसके लिए सेवा कर रहे हैं उसके प्रति आसक्त होना युक्त वैराग्य है। और जो चीजों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं उन चीजों के प्रति आसक्त नहीं रहना है, जिनके लिए कर रहे हैं उनके प्रति आसक्त रखो। दैट इज क्वाइट ना, वो चीजें ना कार्य, ये दोनों के प्रति अनासक्त होना, तभी वो युक्त वैराग्य की कैटेगरी में आता है। He is neither attached to the work nor to the fruits or the media by which he is working. For example, कोई गाड़ी में जाकर लाइफ हैमर बना रहा है, ठीक है, ना गाड़ी के प्रति ना वो क्रिया के प्रति आ सकती है। उसका आसक्ति किसके प्रति है, जिसके लिए कर रहा है उसके प्रति है कि नहीं? That is a simple thing. मान लो उनको बोला गया कि प्रभु जी ऐसा है कि पुजारी नहीं है, तो आप जो है आप थोड़ा एक हफ्ते के लिए पूजा करो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो भी कृष्ण का सेवा है, भी कृष्ण का सेवा है। तो दैट इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। ठीक है, आपका कुछ है प्रोजी, एनीथिंग लास्ट? हाँ, उसका श्लोक कोट करता हूँ, प्रापंचिकतया बुद्धे हरि संबंधि नोस्तम मोक्ष परित्यागो वैराग्यम फल कर कथ्य थे। उसके बाद युक्त वैराग्य का कौन सा श्लोक है, अनासक्तस्य विषय, वही तो बताया, अनासक्त विषय यथार्हौ उपयुञ्जतः, यथार्हौ उपयुञ्जतः निर्बंधनः कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। दिस इज अ श्लोक फॉर इट। उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या है, अनासक्तस्य विषय, वॉट आई टोल्ड वॉज ट्रू, अलग चीज थोड़ी ना बताया। अनासक्त से विषयान, विषयान मतलब विषयों, युक्त वैराग्य मतलब विषयों को भगवान की सेवा में लगा रहे। और लेकिन आसक्ति किसके प्रति होना चाहिए, कृष्ण संबंध है, कृष्ण के प्रति होना चाहिए। और अनासक्ति जो है किसके प्रति होना चाहिए, विषयों के प्रति होना चाहिए। तो आई टोल्ड द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स आर विषय एंड द एक्टिविटी इटसेल्फ। सो आई जस्ट टोल्ड द ट्रांसलेशन इन डिफरेंट वे, दैट्स ऑल, इज अ वर्स for it. Okay, you should memorize the verse, anasaktasya vishyane taro upayunjitaha nirbandhana krishna sambandhe yukta vairagyam uchchate, yuktam vairagyam uchchate. Hare Krishna. Grantharashram bhagavatam Srila Prabhupada ki jai.
हरे कृष्णा। तो मंदिर में आए भक्तों का स्वागत है। विशेष रूप में हम हिज ग्रेस नंद किशोर प्रभु का स्वागत करते हैं, जो मंदिर के बहुत ही सेवा करते हुए अध्यक्ष के रूप में बहुत सुंदर आश्रम इत्यादि का सेवा किया है। तो उनका स्वागत करते हुए हृदय पूर्वक हृदय से हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि माता जी थोड़ा सा बीमार हैं, तो उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनका सुंदर भक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए एक बार हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार मैं आप सबको पुनः याद दिला देता हूँ कि ये जो दिव्य विश्व हरिनाम महोत्सव है, इसके लिए जितने भी काउंसलर्स है वो शास्त्र स्वरूप प्रभु से तुरंत मिले और उनसे वो पर्ची ले लें, जिसमें सारे काउंसलिस जितने भी भक्त हैं वो लिखें 6 तारीख को कितने जपमाला किए और 20 तारीख तक 15 दिन तक कितने भी जपमाला किए वो लिख कर पुनः शास्त्र स्वरूप प्रभु को 20 तारीख को सुबह दे दें, ताकि ये काउंसलर्स उनको देंगे, फिर मंदिर के अध्यक्ष उसे प्रभुपाद जी को अर्पण करेंगे और बताएंगे कि हमारा 1 करोड़ हरिनाम जप का जो संकल्प हमने पूरा किया है। कृपा करके तुरंत आप शास्त्र स्वरूप प्रभु से मिलिए और वो 10 या 20 आपके जितने भी काउंसलर्स है का जो पर्ची है वो ले लो, कि जिसका गिनती रखें आप कि मैंने कितना माला जप किया। दिव्य विश्व हरिनाम महोत्सव के कल शाम को सब लोग आइए 5 बजे और यहाँ पे सेवा भी होगा, फिर हरिनाम संकीर्तन भी होगा। हरिनाम संकीर्तन की जय।